Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कहीं ना कहीं प्रेशर जो लाइफ की तरफ से हमें मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से कुछ लोग ड्रास्टिक स्टेप्स लेने के मुकाम तक पहुंच जाते हैं, अर्थात सुसाइड करने लग पड़ते हैं। सुसाइड से किस तरह से अपने आप को बचाएं, उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो भाई जी।
ओम शांति, नमस्कार।
डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि लाइफ इतनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोग उसकी इम्पोर्टेंस को ही भूल जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं। ऐसे में आपके लिए कौन सी ऐसी राय है आपकी तरफ से जिससे उनकी जिंदगी बच सकेगी?
बहुत अच्छा। इससे और बीमारियों में तो इलाज भी संभव है
जी,
परंतु सुसाइड में, आत्महत्या में कहेंगे कि एक ही बात पॉसिबल है, वह है प्रिवेंशन
जी,
कि उसकी रोकथाम की जाए
जी।
और रोकथाम करने के लिए शुरुआत कहे तो बचपन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही वो बात अंदर में होती है कि जिंदगी अच्छी नहीं है। आपने कहा जिंदगी खूबसूरत है, तो बच्चों को ये बताया जाए कि कितना इम्पोर्टेंट है, है ना, ये जीवन वह इम्पोर्टेंट है। हम प्राणियों के साथ कंपेयर करें तो मानव जीवन कितना अच्छा है,
बिल्कुल
ना, तो इसलिए भाई ये जीवन हमें मिला है तो इसे अच्छे से जीना है
जी।
ये जीवन में बहुत कुछ हम कर सकते, बचपन से ये बात को बताई जाए
जी।
और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़े तब भी वह जो एक बिलीफ सिस्टम अंदर में कहे, या तो हमारी मनः स्थिति उसे सदैव कायम रखे। मेरे सेमिनार्स में मैं अधिकतर ये पूछता हूँ कि 100 साल किसको जीना है, तो 1-2% की उंगलियां ऊपर होती है। इससे सिद्ध होता है कि अगर शरीर साथ दे
जी,
है ना, परमात्मा भी चाहे कि आप 100 साल जियो तो भी लोग 100 साल नहीं जीना चाहते हैं। उसके पीछे कुछ कारण है कि जिससे हमें समाप्त करना चाहिए
जी।
लोग समझते हैं कि अभी रिटायर हो गए, कुछ काम के नहीं, परंतु तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं
जी।
अगर एक मन की स्थिति बने तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं,
बिल्कुल
ना, तो वहां पर सोचना चाहिए कि भल शरीर साथ ना भी दे। एक सरल सा, फ्रांस के एक चिंतक थे
जी,
कि जो छोटे थे तभी उनकी आंखें थी वो ऑलमोस्ट 90% ब्लाइंड हो गए।
अच्छा।
लेकिन फिर भी उन्होंने MA किया ना, करीब 50 की हुए तो बिल्कुल दृष्टि चली गई, फिर भी लोगों को राय देते थे।
अच्छा।
लोग उनके पास आते थे, उनको कुछ समझाते थे, आगे की आयु में भी लोग रोते थे परंतु वो स्वस्थ होते थे,
बिल्कुल।
तो ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि भी शरीर साथ न भी दे। ये डेफिनेट है कि आप 40 में जो कर रहे थे वो 80 ईयर्स में नहीं कर पाएंगे,
बिल्कुल।
आपका रोल है वो कहीं कम हो जाएगा ना, आपकी आवश्यकता कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो भी हम अच्छा कर सके वह करते रहे,
बिल्कुल
ना। कि अगर आप एक रिटायर्ड टीचर है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाइए, बिना मूल्य पढ़ाइए। अगर कोई थोड़ा भी पैसा अगर दे सकते तो उनको जो आपको देना हो दो, तो आप व्यस्त रहेंगे,
बिल्कुल।
और जब व्यस्त रहेंगे तो आप लंबा जिएंगे।
वैसे भी कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर होता है, तो इससे तो बचकर ही रहना चाहिए।
एक तो ये बात, और दूसरा ये भी कि जिसको कहा गया डिज यूज एट्रोफी, कि कोई चीज का उपयोग नहीं होता है, जैसे भी दरवाजा है
जी,
है ना, उसको आप 2 साल बंद रखो तो जंक लग जाएगा,
बिल्कुल।
तो ऐसे ही जो हमारे अंग भी है उसका उपयोग नहीं करो तो बेकार होते जाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट तो दिमाग का उपयोग करना है, हाथ पैर का उपयोग करना है। आप रिटायर होके बैठ जाएंगे तो फिर शायद इतना क्या है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे वही है,
करेक्ट।
तो इसलिए दिमाग का भी उपयोग करना है। जो भी, समझो आप एक रिटायर्ड बैंकर है
जी,
तो ये सोचो कि भी लोगों के प्रॉब्लम्स है
जी,
ना, उनको हेल्प करो। बैंक से लोन चाहिए तो क्या करना चाहिए, अकाउंट खोलना है तो क्या करना चाहिए, घर में भी आप अकाउंट को कैसे लिखो, अपना बजट कैसे बनाओ, आप सोचो, बहुत कुछ है। सिर्फ दिक्कत यहाँ पर होती है कि लोग सोचते हैं कि भी पैसे मिलने चाहिए, पैसे ना भी मिले ना, आप लोगों को उपयोगी हो रहे, आपको दुआएं मिलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि आप लंबा जिएंगे। वो जो होपलेसनेस का बीज बोया जाता है वह बीज ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर आगे चल के सुसाइड तक पहुंचेगा ही नहीं।
जी।
तो एक देखो तो ये तो फाउंडेशन है।
बिल्कुल।
फिर जीवन में समस्याएं आएगी आएगी। व्यक्ति सुइसाइड कब करता है कि जब वो समझता है कि मेरे पास जो शक्तियां है, मेरे पास वो समस्या से लड़ने की जो पावर है, रिसोर्सेस है, वो खत्म हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब वह जीवन से हार जाता है। परंतु ये पक्का करे कि वो रिसोर्सेस कभी भी समाप्त नहीं होते, सिर्फ हमको परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है। कहते हैं एक्सपेक्ट नहीं करो, एक्सेप्ट करो
जी,
कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करो कि भी अभी बुढ़ापा आ गया, मैं इतना दौड़ नहीं सकता हूँ, मेरी आंखें काम नहीं कर रही है, मेरे कान काम नहीं कर रहे, परंतु फिर भी मैं बहुत कुछ कर सकता
हूँ,
है ना, तो वह मुझे करना है। ये अगर पक्का हो जाए तो भी व्यक्ति यह नहीं सोचेगा, और समस्या भी, समझो आर्थिक समस्या आ गई आपके सामने
जी,
तो भी ये सोचिए कि उसका समाधान मिल जाएगा।
बिल्कुल।
और कहीं तो सॉल्यूशन हो सकते हैं।
डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी को अलग पहलू से देखने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक नेगेटिव थॉट एक सीरीज बन जाता है।
बिल्कुल।
फिर हमें सब कुछ आसपास नेगेटिव नजर आने लगता है, क्या इसकी वजह से भी सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ते
हैं? होता ही है ना। हाँ, तो वो एक जो नेगेटिव थॉट आया उसको नेगेटिव आने ही नहीं दो।
अच्छा,
देखो आपने बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा है
जी,
कि उसका आप एक सोल्यूशन बताता
जी।
देखो यहाँ पर अगर आप देखो ने जो अपना है स्टूडियो में, तो कौन सा कलर है ना, लाल है ज्यादा, है ना, लाल है, परंतु इसमें हरा भी है
जी।
हरा है, देखो कहाँ है, देखो वहाँ हरा है, यहाँ भी हरा है
जी,
यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है। तो अभी सिर्फ है कि भी लाल तो दिख रहा है, लेकिन ग्रीन को ढूंढना पड़ेगा, फर्क इतना ही है, ग्रीन भी यहाँ पर है, हरा कलर है नहीं। तो जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि तब निराशा बहुत ज्यादा है, परंतु आशा भी है, सिर्फ है कि वो आशा की किरण को ढूंढना पड़ेगा। तो बस ये सोचो कि उस आशा की किरण को ढूंढना है।
ये कितनी खूबसूरत बात कही आपने, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि पॉजिटिव चीजें भी हमें जिंदगी दे रही है। जब भले हमें लगेगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलने के लिए आप एफर्ट्स नहीं लेंगे, तब तक वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं।
हाँ, एक तो ये बात भी अच्छी है, और दूसरा ऐसा भी माना गया है
जी,
कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान कहीं ना कहीं एक खिड़की को तो खोलता है।
वाव।
परंतु हम वो बंद दरवाजे को ही देख देख करके दुखी हो रहे हैं। जो खिड़की खुली है उसकी ओर देखते ही नहीं
जी। बिल्कुल।
तो जो खिड़की खुली है उसकी ओर देखना है
जी।
बस बात इतनी सी है कि उसको ढूंढना पड़ेगा, जो खुली खिड़की को ढूंढना पड़ेगा।
बिल्कुल।
और ये सोचना है कि मुझे एक्टिव रहना है
जी।
ये भी जो मैंने बात कही ना कि अपने रोल की बात, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे जैसे एज बढ़े ना, करीब मैं आध्यात्मिक अभ्यास अभी 38 ईयर से कर रहा हूँ
जी,
तो इतने सालों में मैंने क्या समझा कि मानव जीवन में सबसे अच्छा क्या करना चाहिए ना। हमने भी बहुत कुछ सोचा कि भी प्रसिद्धि प्राप्त करनी है ना, कि भाई नाम कमाना है, बहुत कुछ सोचा भी, लोगों की सेवा करनी है। लेकिन आज मैं इस अल्टीमेट निर्णय पर आया हूँ कि ये जीवन में सबसे अच्छा ये करना चाहिए कि विस्डम को प्राप्त करो।
okay.
अर्थात नहीं, प्रज्ञा को प्राप्त करो, विवेक, विवेक शायद एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, कि मानव जीवन में सबसे अच्छी काम अगर कुछ करना है तो यही है कि प्रज्ञा को प्राप्त करो
जी।
बस देखो, तो आप दैट इज अल्टीमेट। अन्यथा आपने कुछ भी प्राप्त कर लिया लेकिन दूसरों का आपको अच्छा लगेगा, औरों को आपका अच्छा लगेगा।
ओके,
है ना, आपको आश्चर्य होगा कि बहुत बड़े डॉक्टर है, है ना, मेरे से कुछ साल ही बड़े हैं
जी,
तो बहुत फेमस हो गए अभी तो, है ना, वर्ल्ड वाइड उनको लोग जानते हैं, फिर भी एक बार मुझे मिले बात बात में कहा, मुझे लगता है कि ये सब छोड़ के ना मैं तुम्हारी तरह सेवा करूं।
वाओ,
ये सब मैं छोड़।
You are inspiring so many people।
ऐसा नहीं, मैंने ये इसमें किया, मैंने उनको कहा देखो आप भी बहुत कुछ करते हो।
बिल्कुल।
सिर्फ ये होता है कि शायद मुझे लगेगा कि मैं उनके जैसा बन जाऊं।
करेक्ट।
वो कितने फेमस है, है ना, उनको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं, भाई मैं भी उनके जैसा कुछ करूं, उनके जैसा बनूं, लेकिन उनको लगता है कि भी वो मेरे जैसे,
आपके जैसे बने।
तो सारी दिक्कत यहाँ पर है कि हम अपना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें औरों का अच्छा लगता है।
करेक्ट।
तो ये भी करना चाहिए कि हम अपना अच्छा समझे कि मैंने जो किया, पास्ट में भी किया, वर्तमान में भी कर रहा हूं या अभी करूंगा, वो बेस्ट है। ये भगवान ने मुझे यूनिक रोल दिया है।
बिल्कुल।
और वो जो रोल मुझे दिया है वो मुझे बेस्ट तरीके से करना है। तब भी ये जो स्टेट ऑफ माइंड बनती है ना, वो नहीं बनेगी। और एक बात मैं बताता हूँ, हमने कहीं डिस्कस और डिटेल में भी करेंगे, अभी सिर्फ एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर इसको अच्छे से प्रिवेंट करना है तो ये समझ लो कि जीवन क्या है।
नहीं,
जीवन के लिए मैं थोड़ा बहुत विस्तार से सेमिनार्स में बताता हूँ। ये पहला तो ये बताता हूँ कि लाइफ इज अ पिकनिक।
ओके,
है ना, सचमुच हमको भगवान ने यहाँ पे पिकनिक पे भेजा है ना, कोई समस्या करने के लिए नहीं भेजा है, कॉम्पिटिशन नहीं है। आज हम ये समझते हैं कि जीवन एक कॉम्पिटिशन है तो प्रॉब्लम्स हो रहे सारे,
और कहीं ना कहीं कंपटीशन से हमारे खुद के अंदर की सेल्फ मोरल भी खत्म होती हाँ। जा रही है, जो एक उमंग उत्साह होती है जिंदगी जीने की, वो कंपटीशन के चक्कर में पूरी तरीके से झुलस कर रहे हैं।
मतलब
वो
स्ट्रेस आता है।
बिल्कुल।
कंपटीशन समझते हो तो स्ट्रेस आता है। दूसरी बात ये बताता हूँ कि जीवन एक खेल है।
करेक्ट।
जब हम खेल समझते हैं तो इंजॉय करेंगे भी। बच्चा भी रात को आप बोलो शाम को कि बेटे थोड़ा काम कर गया, बहुत थक गया, अभी मेरे में ताकत ही नहीं है, लेकिन फ्रेंड का फोन आएगा तो तुरंत भागेगा, खेलना है अभी। तो शक्ति कहां से आ गई? क्योंकि वह खेल था। तीसरी बात यह समझिए कि लाइफ इज अ सुपर मेगा सीरियल।
ओके,
कि सीरियल में जैसे एक्टर्स काम करते हैं ऐसे ये मेरा जीवन भी सीरियल है।
ओके,
ये सीरियल का नाम भी मैंने दिया है, मेरी कहानी। पक्का सबको बोलता हूँ कि पक्का करो कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सीरियल है, ये मेरी कहानी है
जी।
और चौथा, लाइफ वो क्या कहेंगे उसको, एक कि डिफरेंट फेस्टिवल, होली होती है जैसे, कि भी होली के दिन तुम्हारे पे कोई शाही भी डाल देगा ना, तो भी गुस्सा नहीं आएगा।
सही बात है,
क्योंकि आज तो होली है, लोग बोलते भी ना आज होली है,
हर रंग डाल
कर,
सकते,
कुछ
कोई
भी कर
रंग।
सकते, हाँ, कैसा भी व्यवहार कर सकते, बिकॉज इट इज अ फेस्टिवल।
करेक्ट।
तो लाइफ इज आल्सो अ फेस्टिवल, है ना, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हारी टांग खींच रहा है, तुमको बदनाम कर रहा है, तो सोचो ये होली का रंग डाल रहा है मेरे पे, है ना, और कुछ नहीं कर रहा है
जी।
बस ये अगर सचमुच अप्रोच आ जाए ना तो उमंग उत्साह जैसे जिंदगी बने आसान, जो हमारी सीरीज की बात है, तो ये चार बातों को सोचो सचमुच जिंदगी आसान बन जाएगी
जी।
और वो सुसाइड का विचार ही नहीं आएगा
जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उससे अगर वो बच गए हैं, ऐसे में उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से वो उन्हें फिर से एक लॉ दे जिससे वो जिंदगी को वापस से जी सके?
बिल्कुल, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो उन्हें एक्सेप्ट कर।
अच्छा,
यहाँ भी एम्पथी आएगी, ये बताया जाए कि हम आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं।
ओके,
है ना, ये नहीं कि तुमने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना, ऐसे एडवाइस नहीं दे। सबसे पहला ये है कि जैसे काउंसिलिंग में भी कहा गया है कि एम्पथाइज करो, जैसे नहीं कभी कोई पेशेंट अपना दुख बताता है ना, अपनी समस्या बताता है, तो काउंसिलर को ये बताना है कि भी मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ कि आप निराश हो रहे भी इस परिस्थिति में, आप आशा को खो रहे, आप निराश हो रहे, तो पेशेंट को अच्छा लगता है कि भी मेरी फीलिंग को कोई समझने वाला है। तो यहाँ पर भी सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि रिलेटिव्स ये कहे कि भी हम आपकी समस्या को समझ रहे, कि भी आपको इतनी बीमारी थी या बिजनेस में लॉस हुआ था और कोई बदनामी हुई थी ना, तो पेशेंट पहले तो रिलैक्स होगा कि मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया है
जी
ना, ये आज तो देखो तो एक प्रकार से क्राइम है,
बिल्कुल
तुरंत पुलिस आएगी, भी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स को पहले पुलिस को बुलाना है क्योंकि क्राइम है। मैं समझता हूँ भल क्राइम भी है, ये नहीं कहूँगा कि भाई इसको लॉ को बदल दो, परंतु तब एम्पथाइज करना है कि वो फीलिंग को समझो, और फिर एक बार आपने एम्पथाइज किया फिर उनको बताओ कि भी यू डोंट वरी, नहीं हम पूरा आपको सपोर्ट देंगे ना, हर प्रकार से हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट देंगे जिस प्रकार की परिस्थिति
जी,
और प्रैक्टिकली भी सपोर्ट देना है ना, जितना आप प्रैक्टिकली सपोर्ट देंगे उतना उसे फायदा होगा और ये भी सोचना है कि वापस भी कर सकता है।
अच्छा,
और अधिकतर एक तो ये जो बात है कि जब पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड है तब तो सुइसाइड नहीं करता है क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है, परंतु जब दवाइयों से काउंसलिंग से इम्प्रूव होने लगता है तब उसमें शक्ति आती है और वो सुइसाइड करता है। तो इसलिए संभाल तब रखनी है ना, कई बार जब एकदम पेशेंट निराश है, कोई शक्ति नहीं, मेरे में ताकत ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब तो रिलेटिव साथ में होते हैं, कि जब वो थोड़ा 10% 25% अच्छा होने लगा तो समझता अभी तो अच्छा हो रहा है, लेकिन तब ही उसमें ताकत आती है सुइसाइड करने की,
तो वो फिर से रिपीट कर सकते
हैं। सकता है, या तो फर्स्ट टाइम भी जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट होते हैं उसमें भी ये बात संभव है कि जब वो इम्प्रूव होने लगा तब वो सुइसाइड करता है। तो इसलिए उस समय ज्यादा संभाल करनी है, ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना है, बस सिर्फ उनको सपोर्ट दो, साथ दो, जब चाहिए तब आप अवेलेबल होने चाहिए, इस प्रकार से कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो। नहीं, एक छोटी सी चीज बहुत काम करती है लेकिन लोग करते नहीं, कि उनको ये बताया जाए कि जब भी तुम्हें ऐसे विचार आए तब हम साथ में है, तुम जस्ट एक हमको फोन करना। यहाँ तक हम लोग भी कहते हैं कि जो पेशेंट्स में ऐसा लगता है ना, तो हम भी कहते हैं कि भाई ये स्टेज में ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करना हमको, तो कई बार पेशेंट दिन में 50 बार फोन करता है।
करेक्ट।
लेकिन जब ऐसी इमरजेंसी हो तो जरूर करना, हम लोग भी आपको सपोर्ट देंगे तब।
बिल्कुल,
है ना, उसी समय वो एक मिनट की बात होती है, एक मिनट कोई उसको थोड़ा सा कुछ बता दे, सपोर्ट दे, तो व्यक्ति फिर वो अटेम्प्ट करेगा ही नहीं। तो ये सारी बात, और फिर उसके जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है
जी,
अगर कोई रियल सिचुएशन है तो वो रियल सिचुएशन से बाहर आने में भी रिलेटिव्स बहुत मदद रूप हो सकते हैं।
अच्छा,
और फिर ट्रीटमेंट भी करानी चाहिए, क्योंकि जब जो डिजीज का वो पार्ट है वहां तो ट्रीटमेंट ही हेल्प करेगी। जैसे सिजोफ्रेनिया है, मैनिक डिप्रेशन है, वहां तो ज्यादा मेडिसिन ही काम करेगी।
डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि किस तरह से रिलेटिव्स का क्या रोल होता है, अब मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर का क्या रोल होता है कि वो पोस्ट सुसाइडल अटेम्प्ट के किस तरह से वो उन्हें उससे बाहर निकालने में मदद कर सकेंगे।
जी जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर का भी यही बात है कि डॉक्टर को आके डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। कई बार हमको भी ये सिखाया जाता है कि भी कोई कोई पेशेंट को गुस्सा करना पड़ता है, परंतु गुस्सा किसी को भी पसंद नहीं है। एसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर तो तुरंत तो एसर्ट भी नहीं करना है। डॉक्टर को भी एम्पथाइज करना है
जी,
कि भी पूरी हिस्ट्री ले कि भी क्या हुआ है ना, पहले तो उसको रिवाइव करना है। डॉक्टर का रोल सबसे पहले तो यह है,
बिल्कुल
ना, कि उसको बचाना है, और अधिकतर उसमें वो फिजिशियन होता है। साइकियाट्रिस्ट तुरंत नहीं देखता है, है ना, वह फिजिशियन होगा कि जिसको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे उसको उसको बचाना है।
बिल्कुल,
तो फिजिशियन को भी उसको एक बार तो बचाना है और कुछ भी नहीं बोलना है, भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसे थोड़ा जो भी एश्योरेंस दे सके वो एश्योरेंस दे।
बिल्कुल,
जब काउंसिलर या साइकियाट्रिस्ट आते हैं तब उनको भी पहले तो समझे कि भी क्या हुआ, है ना, कैसे हुआ, पास हिस्ट्री क्या थी, वो कौन सी मेडिसिन ले रहे थे, है ना, समस्या क्या थी
जी।
वो पूरी एक बार हिस्ट्री ले ले फिर एम्पथाइज करे यहाँ भी।
ओके,
ये मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ और फिर यह ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जिससे दवाई देनी है तो दवाई से भी आपको इसमें से बाहर आने में मदद मिलेगी।
बिल्कुल,
या तो इस प्रकार से आप यह थेरेपी भी करो, काउंसिलिंग करो, जिससे आप बाहर आएंगे।
बिल्कुल,
ना और भी जो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि वह तरीके भी अगर काउंसिलर या साइकेट्रिस्ट उनको सजेस्ट करे, जैसे कि भी ग्रुप में रहना, औरों से भी सपोर्ट लेना, एक व्यक्ति भी जो आपके साथ सहानुभूति रखता है ना, उससे सदैव संपर्क में रखो, जो भी बात आए उनसे शेयर करो, इस प्रकार से डॉक्टर को भी समझाना चाहिए, इस प्रकार से मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को भी एम्पथाइज करना है ना, उसको रास्ता बताना है, डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर सुसाइड के सिम्टम्स दिखा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले तो ये भरोसा दिलाइए कि आप उनके साथ सदा हैं, साथ ही साथ उन्हें एम्पथाइज करें, ना कि सिंपथाइज करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
ओम शांति।
ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, भले ही कितने भी दरवाजे बंद क्यों ना हो जाए, कोई एक ऐसी खिड़की ज़रूर होती है जो आपको रोशनी की तरफ ले जाएगी। कभी भी ज़िंदगी में अपने आत्मविश्वास को कम मत करिए और भरोसा रखिए कि भगवान सदा आपके साथ है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।